Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Aparadha Kshamarpana Stotram, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जजाति ने अपने संपूर्ण जो आयु भगवान ने दिया वो तो भोग के द्वारा ही बिताया, अब पुत्र के आयु को लेकर के भोग में लिप्त हुए, परंतु उनका जो अंतिम जो अनुभव है, व्यक्ति जीवन भर जो कमाता है करता है उसका एक कंक्लूशन वो उनके हाथ में आ जाता है। ये अचीवमेंट है। आप जगत से संसार से क्या शिक्षा लेते हैं? अगर आपके जीवन में कोई शिक्षा नहीं है नारायण, तो फिर आप अपने आयु को व्यर्थ गवाए। संसार की सत्यता, संसार की रियलिटी को समझते हुए व्यक्ति सजग होता है तो उनके जीवन में एक ऑप्शन, एक परिवर्तन, एक चेंज हो सकता है। और जजाति महाभारत में लिखते हैं, न यातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। कितना अच्छा ये वाक्य है जो हमारे लिए एक आदर्श श्लोक बन गया। जीवन भर का अनुभव जजाति बता रहे, न जातु कामानाम उपभोगेन साम्यति। नारायण, उपभोग के द्वारा तुम कामनाओं को समन नहीं कर सकते। दृष्टांत दे रहे, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में घृताहुति देने पर अग्नि और प्रकट हो जाती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो तृष्णा है, जो कामना है, जो काम है, उस पर अगर वो सोचता है कि हम कामों को दे दे शरीर को और उससे हम तृप्त हो जाएंगे, नारायण कदापि नहीं, ये भूल। इसीलिए न जातु कामानाम उपभोगेन साम्यति। न्यू एक कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोगों को भी पता तो है ही कि स्वामी जी कई बार प्रश्न का सन्मुख होना पड़ता है कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थदेन संन्यास। ये है बाई चैनल, वाई यू क्यों आप, मैं अपना ही प्रश्न देखो रख दिया आपके पास कि आप बाई चैनल न जाकर के क्यों ऐसा कूदे। प्रश्न ठीक है, जो करता शायद वो इसके हिसाब से ठीक है कि ये तो हमारे वर्णाश्रम धर्म है ना, वर्ण कि पहले तुम ब्रह्मचर्य रह के गुरु गृह में अध्ययन करो, फिर गारहस्थ जीवन में जाओ, फिर जीवन को ठीक से समेटते हुए वानप्रस्थ, फिर एकाग्र होकर के सन्यास जीवन लीड करो। तो फिर ये जो शास्त्र विधि है, क्या ये सबको मान्य नहीं है? क्या ये इस प्रकार वाई चैनल वाई स्टेप जाने से प्रोग्रेस नहीं कर सकते व्यक्ति कि कूदे तो वो प्रोग्रेस है? नारायण, एक शास्त्र के एक हिस्सा को देखने से गलत अर्थ हो सकता है। शास्त्र में ये भी है, यद अहरेव विरजित तद अहरेव प्रव्रजित। जिस दिन तुम्हारे मन में अगर थोड़ा भी प्रव्रज्ञा लेने की विरक्ति है, संन्यास लेने के लिए एक वैराग्य है, तो फिर तुम किसी भी क्लास में हो, किसी भी आश्रम में हो, वहां से तुम सीधे ईश्वर की ओर जा सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन वो बाल, ये जो यौवन की जो कथा है हम सब की, यही है। हम आज तक नारायण एकदम व्याकुल होकर के घूम रहे कि हमें भोग मिले, हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। नारायण भगवत भक्तजन, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि जगत की सत्यता को हम देख नहीं पा रहे? इतनी अज्ञानता अथवा इतनी अविवेकता कि संसार के सत्यता को, संसार के रियलिटी को आप देखो, और उसको जब तक आप विवेक के द्वारा नहीं जान सकते, नहीं देख सकते नारायण, तो फिर गति वही है। फिर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पंचवीर मर्म स्थानम, यौवन की सबसे जो भगवान ने हमें दिया है वो है पांच इंस्ट्रूमेंट आपके पास है नारायण, पांच इंद्रिय, पांच भोगों को भोगने के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, काश भगवान और दो चार दे देते, कमी होता है, भरता नहीं। शास्त्रकार नीतिकार कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा हत पंचवीरेव पंच। कुरंग शब्द का अर्थ है हिरण, हिरण को स्वीकारी कैसे स्वीकार करते हैं, वो आवाज शब्द उनका कर्ण, एक ही इंद्रिय इतना प्रबल है, वो अच्छी तरह से आप वंशी ध्वनि करो तो वो आकर्षित होकर के बंध जाता है। मातंग हाथी, उनके इस ये स्पर्श इंद्रिय इतना प्रबल है, जब हाथियों को शिकारी पकड़ने के लिए जाते हैं तो स्त्री हाथियों को भेज देते हैं और उसके गंध से पुरुष हाथी आकर के कैसे ट्रेनिंग, ये देख रहा था उसमें, उससे वो घिसते हुए उस गड्ढे में आकर के गिरता है, उसके लिए पहले से ही बना के रखते हैं। और मादा हाथी को शिक्षा दिए जाते, उसको ले आकर के इधर से ले आना, वो गिरेगा पुरुष हाथी और वो धीरे से। तो किस लिए नारायण, केवल उनका जो स्पर्श कातरता है, स्पर्श के प्रति एक आकर्षण है। यह हो गया मातंग पतंग। देखिएगा दीपावली के समय कभी भी दीपक जलाए, कितने पतंग कीड़े मकोड़े आकर के, क्यों? क्योंकि वो रूप में आकर्षित है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा वो रूप देख करके उसी में वो झपटता है, उनको पता ही नहीं कि हमारा मृत्यु इसी पे है, मौत यही है। और महाराज मीन रसन इंद्रिय के कारण मछली, कांटा में थोड़ा सा भोजन है महाराज, अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं कि एक दो बार वो छूट भी जाता है, परंतु वो जो रसनेन्द्रिय बेकाबू बेताब, इसके लिए फिर वही उस खाद्य के लिए वो जाता है और वो तड़प करके मारता है। और महाराज गंध के लिए तो क्या कहना है, भ्रमर हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो ये पांच चीजों को गिनती कराया कि प्रत्येक के पास एक एक इंद्रिय प्रबल है। नीतिकार कह रहे एक एक इंद्रिय प्रबल है, उससे ही उसका मृत्यु निश्चित है, वो मरता है, उसी इंद्रियों के परवश होकर के वो मरता है। परंतु एक प्रमादी सकथम न हन्यते यस्येवते पंच पंचभिरेव तत्व। एक एक के प्रमादी होने के नाते वो मृत्यु को प्राप्त करता है, और हमारी दशा है ना, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो, अगर मौका मिले तो भगवान को थोड़ा देख ही लेंगे। न आयु से संतुष्टि है, न तृप्ति, न भोग से, आपके जीवन में संतोष कहां है? हमारे जीवन में ऊपर से नारायण नहीं, कहने के लिए नारायण नहीं, आप अंदर से एक उसके विचार, यही विवेक है कि हम किससे तृप्त है, हमारे जीवन से हम तृप्त है, हम अपने भोगों से तृप्त है, जो भी हमने कामना वासना किया, जो भी हमने पाया, अगर आपके वासना के अनुसार ही आपने कुछ पाया, क्या उससे आप तृप्त है? इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं, इस तृष्णा को तुम कभी भी शांत नहीं कर सकते हो, इस कामना को तुम कभी भी शांत नहीं कर सकते हो अगर जीवन में संतोष न हो। दरिद्रता और अमीरता क्या है? गरीबी और अमीरी क्या है? नारायण, ये बाहरी पोशाक आशाक जो है अमीरी का लक्षण नहीं है। सुरेश्वर वार्तिक आचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य के शिष्य, सही भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला। जिनके अंदर जितनी तृष्णा है वो उतना ही दरिद्र है। बाहर से हम कैसे भी आवरण लेकर के आए, परंतु हमारे मन को थोड़ा देखो, मन की भूख कहां तक है। एक भिखारी नारायण मंदिर के सामने बैठा है, उसका आपके पास कितना वो आग्रह रखता है, ये जितना देगा, परंतु उससे ज्यादा मेरे मन में है। उसको अगर 100 चाहिए, नारायण हम 100 से संतुष्ट नहीं हो सकते। हम तो लाख लाख भी आजकल कम होने लगा, करोड़ अरबों, फिर भी चलो मिला, परंतु अलम इति मन्ने त्वम नालमेति मन्येता। बिल्कुल अभी अलम नहीं हुआ। तो ये जो सिलसिला है, ये जो परंपरा है, ये जो हमारे जीवन है, क्या इसकी भरपाई करते 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 कहां हम पहुंच रहे हैं? इस कलश में तो नारायण आयु तो अमृत रूपी आयु तो 100 दिया था, और इस 100 में से हमारे जीवन में प्रतिक्षण हम उस कलश को चूते हुए देख रहे हैं। ये जो आंख कान नाक, इससे सब वो रस, अमृत रूपी रस, उम्र एज, वो चू रहा है, जा रहा है। परंतु अभी भी अगर सजगता न हो, अभी भी अगर विवेक जागृत न हो, तो फिर एक हताशा, एक विषाद के सिवाय हमारे हाथ और कुछ लगने वाला। आचार्य शंकर वही बोल रहे हैं, पंचभीर मर्म संधो दष्टो नष्टो विवेक। ये पांच इंद्रियों के द्वारा हमने दष्टो, हमें दंशन कर रहा, पांचों इंद्रियों हमको डंस रहे महाराज। परंतु कभी भी देखिए, ये पढ़ रहा हूं, परंतु कभी भी ऐसा लगता है कि ये इंद्रियों हमको डंस रहा है? उससे बिल्कुल विपरीत बोध है कि हमें तो सुख का अनुभव हो रहा है। यही विवेक है। ये जो इंद्रिय अपने आप हमें मजबूर कर देते हैं विषयों के प्रति जाने के लिए, उसको थोड़ा समझो। आचार्य शंकर कह रहे वही दष्ट, और इससे ये दंशन से क्या हुआ, नतीजा क्या मिला, नष्टो विवेक। और महाराज, श्रुत धन युवती स्वाद सौख्य निषण। बस स्त्री, पुत्र, धन और महाराज, इसी के स्वाद में वो सुखी अनुभव, सुख का अनुभव कर रहे हैं। सौख्य निषण, उसी में डूबे हुए हैं, उसी में रमण कर रहे हैं। बताइए, सैवी चिंता विहीनम, थोड़ा गलत लिखा क्या आचार्य शंकर? आचार्य शंकर लिखते हैं, कोई चिंता नहीं है महाराज, है ना, कोई चिंता नहीं है ना हम लोगों को? बोला हाँ आचार्य, समझे नहीं ना, सन्यासी रहा, चिंता तो हमारे को बहुत है, बहुत कुछ करना है, भोग की चिंता है। आचार्य शंकर उस चिंता की बात नहीं कह रहे, वो चिंता कर रहे हम आयु खत्म कर रहे, परंतु अभी भी सजगता की कोई, सचेतनता की कोई चिंता अभी भी हमारे मन में, और इसीलिए हम कहते हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं। सैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो। चिंता नहीं है तो फिर क्या है आपके हृदय में? मान गर्वादिरूढ़म, गर्व है, अहंकार उल्टा आ गया। चिंता नहीं है, डोंट केयर, कोई भाव नहीं, कोई चिंता नहीं, तो फिर कैसे जीवन नारायण विवेक को कैसे आप जागृत कर सकते हैं। यौवन की जो मुख्य दो बिंदु है, मैं जिसलिए ये कहा, एक तो है कि मान गर्वम, आचार्य शंकर पहले भी बताया, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काल स्वर्वम। मां कुरु न करो, धन जन यौवन गर्वम, धन के प्रति अहंकार रखने से कोई ये नहीं है, जन के प्रति, यौवन के प्रति, ये जो है यौवन पौढ़ युवावस्था का यही विचार, परंतु ख्याल ही नहीं है कि बस युवावस्था भी कब जाकर के वार्धक्य में बदल गया, और इस वार्धक्य में आकर के नारायण एक क्या चिंता है इस वार्धक्य के लिए, हमने सारा जीवन परिश्रम किया, जो मन में चाहा वही हमने पाया, बाय प्लान हमने अचीव किया, ऐसा नहीं कि विदाउट प्लान आपने जीवन लीड किया और आपको मिल गया तुक्के से, ऐसा नहीं, आपने बाय प्लान किया और बड़े होश के साथ आपने सब कुछ पाया, परंतु वार्धक्य को थोड़ा विचार करो। आचार्य शंकर बोल रहे हैं कि देखो मान गर्भादि रूढ़म, मैं वो जो युवावस्था है यौवन अवस्था है वो भी आ गई महाराज, परंतु उसको हम समझ ही नहीं पाए, बचपन कब बीत गया, कब महाराज युवावस्था में आ गए और यौवन में महाराज बिल्कुल अपने इंद्रियों के भोग में और अहंकार में ही लगा रहा, कब हम वार्धक्य में पहुंच गए। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गति, वार्धक्य की जो परम निष्ठुरता है वो है इंद्रियों की असमर्थता। पहले बता रहे वार्धक्ये च इंद्रियाणाम विगत गति मति, विगत मतलब निकल गया, जिसकी गति महाराज बिल्कुल वो वार्धक्य में इंद्रिय शिथिल। अच्छा कभी हमने ऐसा भी विचार नहीं आता है कि हम इतना कुछ संभाल करके इतना कुछ सुरक्षा की बंदोबस्त करते हैं, कभी सोचते नहीं कि हम वार्धक्य को रोकने के लिए कुछ करें, अरे इंद्रियों को बिल्कुल तरोताजा रखने के लिए कुछ करें, कुछ करते हैं। परंतु नारायण ये जो धीरे धीरे जो अवक्षय है, आप बाहर से कुछ भी इनपुट करो, चाहे वो खाद्य के रूप में मेडिसिन के रूप में, परंतु जो क्षय है ना, जो विधाता का विधान है, इसको आप कभी नहीं रोक सकते, कभी नहीं। एक वृद्ध, उसको आप कितना भी विटामिन दो, कुछ भी दो, तो वो नारायण धीरे धीरे तो उसके शरीर की जो धर्म है वो तो अवक्षय। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, वार्धक्य तो है, परंतु विवेक के द्वारा अगर आप सजग है कि हम कितने भी कोशिश करें, अवक्षय तो अवश्यम भावी, हाँ एकदम तुरंत बिगड़ ना जाए शरीर को ठीक रखे, इसलिए हम प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन मन से अगर ऐसा, इसीलिए देखिए वार्धक्य के समय ये जो एक कंप्लेन होता है ना, ये अपने परिवार के ऊपर, और परिवार ही केवल नहीं, यहां तक के खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, और फिर एक विधाता के ऊपर, क्यों? क्योंकि आप जैसा चाह रहे हैं ऐसा आप नहीं पा रहे, इसीलिए आप विधाता को भी कोसने के लिए छोड़ते नहीं है, इसलिए वार्धक्य के जो अवश्यम भावी है उसको विचार करके कि वार्धक्य है, मैं कोशिश करूंगा रोधन करने के लिए, परंतु गति तो महाराज वही है, तो मेंटली जो आपको पीस मिलने वाला है वो नारायण कोई सहानुभूति से नहीं मिल पाएगा। इसलिए जीवन में इंद्रियों की जो परवशता है उसको समझते हुए, इंद्रियों की जो गति है, प्रकृति है, उसको समझते हुए व्यक्ति सजग हो जाता है तो वो उसके जीवन में एक संभावना, एक परिवर्तन आ सकता है। इसलिए आचार्य शंकर कह रहे, वार्धक्य चेन्द्रियाणाम विगत गतिमति। इतना कुछ नारायण हमने किया, वार्धक्य में पहुंच गए, वार्धक्य के एक समय कोई मिलने आया आपसे, आएगा कि नहीं आएगा? दूर है अभी। आप क्यों अभी बोल रहे? हम लोग सुबह सुबह 7:30 बजे आए और आप सीधे कहीं और मिलाने की बात करते, भाई क्या करे। सब प्रभु भक्त कुत्ता भी होता है। तो वो साहब आ गए मानो, और वो व्यक्ति जो है सेठ जी सीधा पहुंचे देवालय में। देवालय समझ रहे हैं ना, ये जसलोक बड़ा देवालय है, ये सब बड़े बड़े देवालय है। तो देवालय में पहुंचे तो अब पहुंचे तो पहुंचे वीआईपी रूम में एकदम सीधा, जहां और कोई नहीं देखता, आईसीयू है ना, बस देखने वाला वही है। अब महाराज तो 2-3 दिन तो किसी से मिलना नहीं, कोई इसी से क्या, चारों तरफ जो है, जो हम युवावस्था में इधर उधर लगा करके सुनते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, अब उस समय महाराज अपने आप लगाना पड़ता है चारों तरफ। पहले 2 लगाते थे तो अभी चारों तरफ दे दिया, अब जो सुनो कितना सुनना है, देख लो, श्वास ले लो। फिर भी जब थोड़ा सा खोल दिया मानो एक दो चैन, बाहर से हमारे सगा संबंधी देख रहे, वो श्रेष्ठ जी का देख करके क्या हाल है, हाथ हिलाने का नहीं है। बाहर से कोई कर रहे, बाहर से कर रहे, मैं तो भाई कर नहीं रहे, ऐसा मत सोचो, हाँ कैसे हैं ठीक है। अब अंदर व्यक्ति केवल 2 पुतला ही हिला सकता है, कुछ कर नहीं सकते, सामर्थ्य अभाव, अस्वस्थता कारण। सब चले गए, टाइम होने पर निकाल दिया देवालय इसकी, चलो हो गया टाइम। आप महाराज अकेला वो सेठ जी पड़ा है, सेठ जी अचानक अनुभव कर रहे कोई आया उनसे मिलने, आया तो एकदम अंदर आ गए, बोले आप कौन है सेठ जी, पूछ रहे, बोले अरे तुम पहचाने नहीं, थोड़ा अच्छी तरह से देखो, मैं तो पुराना साथी हूं आपके। बोला अच्छा, थोड़ा देखा, अरे आप तो भैंस के ऊपर बैठे हो, कहीं यमराज तो नहीं हो? बोला हाँ, आप ठीक पहचाना, ये पुराने मित्र को अपने पहचान लिया। बोले देखो, वो घबराया, बोले ये क्या तमाशा है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं कागजात तैयारी, तुम आ गए हो, देखो मैं ले आया हूं अपने अटैची, और वहां से एक चेकबुक निकाल करके दे दिया कि चलो एक ब्लैंक चेक साइन करके तुम जाओ उठाओ और हमको 10 मिनट समय दे दो। देगा कि नहीं नारायण, देख लेना, नहीं देगा निश्चय है ना, देगा भाई, पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। कल किसी ने बोला महाराज, महाराज पैसा हो तो शेर का आंख भी मिल सकता है बॉम्बे में। हम लोग जरूरत नहीं, अपनी आंख इतना कष्ट दे रहे, शेर का आंख का करे बताओ। तो उसको समय देगा कि नहीं। फिर जब बोला कि भाई ये चेक चूक हमारे उधर नहीं चलता, हमारे उधर ऐसे कोई बैंक नहीं है तुम्हारे जैसे, ये नहीं चलेगा, चलो समय हो गया। कहते अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, पहले तो थोड़ा धन का अहम दिखाया। फिर उन्होंने जब गुस्सा हो गया सेठ जी, पूछा कि तुम कैसे भद्र पुरुष हो, तुम यमराज के दूत हो ना, यमराज हो तो कम से कम अधिकारी पुरुष हो, तुमने भी कुछ साधना किया। अब वो नैतिक वाक्य बोलने लगा कि तुमको थोड़ा शिक्षा नहीं है कि कम से कम हेलो करके आओ, भद्रता है समाज की कि कम से बता करके आना चाहिए। आप क्या बताए, देखो आपको बताया, अचानक आ जाते हैं। परंतु नारायण यमराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं बताया एक बार नहीं, 6-6 बार तुमको हमने सूचित किया, परंतु अप्लाई अप्लाई अप्लाई, नो रिप्लाई। बोले ये तुम्हारी गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो, असंभव है। वहीं लड़ाई चल रही है महाराज, आईसीयू में ही। तो वो बोला तुम कहां हमको दिया सूचना, ऐसे तुम झूठ क्यों बोले जा रहे हो। बोले देखो बताता हूं मैं, भर्तृहरि जी की वो श्लोक, गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं चले लायते वार्तां नाद्रियते बान्धवजनै भार्यां न श्रूयते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसी पुत्रोप्यमित्रायते। कहते देखो एक एक बार हमने तुमको सूचित किया, गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता, द्वितीय पहले मैं ये बदन को थोड़ा सिकुड़ा है ना, संकुचित किया कि नहीं, झुर्रिया आने लगी नहीं, लेकिन ऊपर से हम कितना भी घीस घीस करके टाइट बनाए कुछ नहीं होने वाला है, अंदर से तुम्हारा हिल हो गया, चल रहा है। पहले एक सूचना तुमको दिया सेठ जी, कहते थे दूसरा सूचना तुमको दिया कि तुम जब युवावस्था में कैसे चलते थे, वार्धक के महाराज पांव इधर रखना चाहते हैं हो जाता है लड़खड़ाज, गतिर विगलिता, पर तुमने तभी चेते नहीं, फिर मैंने थोड़ा जोर से धक्का दिया, भ्रष्टाच दंतावली, एक मुक्का मारा सारा दांत। बोला अच्छा ही हुआ, अब बढ़िया, पहले तो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, ऊंचा नीचा, अब तो एक लेवल करके बाइंडिंग करा लूंगा, बढ़िया दांत। तुमने वो भी ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर नश्यति, मेरे को एक मिल गया, दृष्टिर नश्यति, दृष्टिर नश्यति, हाँ देखने की शक्ति भी कम, वर्धते बधिरता, सुनाई नहीं पड़ते, पहले आकर के माइक कम करो, हल में इतना तेज से क्यों माइक बजाते हो, थोड़ा कम नहीं कर सकते, पहले आकर के एसी को बढ़ाओ, युवावस्था में गर्मी है महाराज, अब आते ही भाई दिनकर काम करो ठंडी लगती है, चलो स्वाभाविक नेचर है, कम करो आवाज को थोड़ा बढ़ाओ, इतना क्यों माइक कम करके रखो, भरता नहीं ना वो जो अंदर से बॉडी बिल्कुल, और हमारी मांग वक्त्रम चले लायते, हम बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ निकल जाता है, वार्ताम नाद्रियते बांधव जनय, स्वजन कुटुंब बंधु ये सब बात नहीं करना चाहते हैं, ये सब एक एक सूचना है नारायण, भार्याम न श्रूयते, भर्तृहरि जी लिख रहे हैं पत्नी भी सेवा करने के लिए सक्षम, स्वाभाविक है, और अंत में लिख रहे हैं हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसी, पुरुष के मनुष्य के जो जीर्ण वयस है वार्धावस्था वार्धक्य, कितना कष्टदायक है, चारों तरफ से जिन लोगों के लिए संपूर्ण जीवन बिता दिया नारायण, जिनके कामना वासनाओं से अपने आयु को बिल्कुल न्योछावर कर दिया, आज सब अलग और वो अकेला, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसी पुत्रोप्यमित्रायते, पुत्र भी अमित्र हो जाते हैं। तो ये तो है हमारी वार्धक्य, तो क्या इस वार्धक्य को हम सुंदर नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, कल मैं इस पर बताऊंगा। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति, शांति।